कोविड-19 की महामारी से लड़ने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की जीडीपी के 10% के बराबर के स्टिमुलस पैकेज की घोषणा की। इस पैकेज के बारे में ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं नई दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 बजे जब वो बोलने के लिए आ रहे थे, बहुत से लोगों को अलग अलग तरह के अनुमान थे, और उसमें 2-3 बातें बहुत खास थी कि क्या जो देश 3 चरण का लॉकडाउन अब पूरा होने जा रहा है, यानी देशबंदी है, तो 4th चरण के लिए हम कैसे जा रहे हैं, और खास करके देश का वो प्रवासी मजदूर और वो जो उद्योग हैं जिनकी हालत बहुत खराब है, जो बहुत बुरे हाल में है, उनको कैसे वो ठीक करेंगे, उसका कोई फॉर्मूला है क्या। और कल बहुत बड़ा पैकेज जो किसी को अनुमान नहीं था, 20 लाख करोड़ उसको जो कल प्रधानमंत्री ने बताया, और आज से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उसको एक एक करके अनाउंस करेंगी। 2 चीजें इसमें महत्वपूर्ण है जो मुझे लगता है कि समझना चाहिए सभी को। एक तो ये है कि 20 लाख करोड़ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए जो मेजर्स लिए वो सब इसमें शामिल है, यानी हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आज से जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी पैकेजेज का ऐलान करेंगी तो उसमें करीब 13-14 लाख करोड़ के पैकेज का नया ऐलान होगा, यानी जो एडिशन होगा वो करीब 13-14 लाख करोड़ के पैकेज का होगा, और उसमें वो कोशिश करेंगी कि खास करके जो सबसे बड़ा कंसर्न है अभी कि जो एमएसएमई है उस सेक्टर को कैसे वो उनके हाथ में दें। और मुझे लगता है, जो मेरा अपना अनुमान है, जो मैं देख पा रहा हूँ, जिसकी जरूरत भी है, कि सबसे ज्यादा वो क्रेडिट साइड में होगा, यानी कर्ज की तरफ कैसे लोगों को आसानी से रकम मिल सके, वो एक बहुत बड़ा हिस्सा होगा। और उसके अलावा जो ढेर सारे वर्टिकल्स हैं जिसमें सभी में कोशिश होगी कि सबके हाथ में कम से कम वो रकम पहुंचे जिससे इकोनॉमी का पहिया फिर से चले।
हर्षवर्धन जी, एक बड़ी बात, बड़ी समस्या भी भारत में दिखाई देती है, ये श्रमिकों की। अभी अगर सरकार उस पहिए को चलाने की कोशिश कर रही है तो जहां रोजगार है, जहां फैक्ट्रियां हैं, जहां काम है, वहां से अगर श्रमिक चले जाएंगे तो उस पहिए का एक बहुत बड़ा पुर्जा ही नहीं होगा, तो चलेगा कैसे?
ये सवाल मुझे लगता है कि सबसे बड़ा है, और इसमें हमें 2 तरह से देखना चाहिए। एक तो ये कि जो श्रमिक लौट रहा है, निश्चित तौर पर वो उन जगहों से लौट रहा है जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं, जो अगर भारत के संदर्भ में देखें तो महाराष्ट्र है, गुजरात है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, दिल्ली एनसीआर है, तो ये वो जगहें हैं जहां पर काम बहुत ज्यादा है और देश भर से लोग आते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत जरूरी बात समझने की है कि पिछले कुछ समय में जो इन शहरों में भी जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का रेट रहा है वो उतना अच्छा नहीं रहा कोविड-19 के पहले ही, लेकिन उसके बाद भी अगर हम बात करें तो जो स्थितियां थी उसमें सबसे बड़ा सवाल यही था कि जो डेवलप्ड स्टेट हैं, जहां इंडस्ट्रीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, वो क्या इतना रोजगार उस तेजी में दे पाएंगे। तो 2 चीजें हैं, एक तो उतना श्रमिक वापस नहीं लौटा है कि पूरी तरह से उनको काम करने के लिए नहीं मिलेगा, और दूसरा वो जहां लौट रहे हैं पहली बार देश में है कि भारत की राज्य सरकारें, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इवन कर्नाटक जो पहले से ही इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स में से है, और ये सारे के सारे राज्य, छोटा असम जो पूर्वोत्तर का राज्य है, इन सभी राज्यों ने अपने जो लेबर रिफॉर्म है वो बहुत तेजी में किए हैं। मतलब ऐसा अप्रत्याशित है, भारत में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस तरह से किसी ऐसे मौके पर जब सरकारों के जिम्मे लोगों को राशन पहुंचाना, लोगों को नकदी देना, कैसे हेल्थ सर्विसेज जो हमारी हैं वो निश्चित तौर पर भारत की हेल्थ सर्विसेज उतनी बहुत वर्ल्ड तो नहीं है, बहुत सी मुश्किलें हैं यहाँ, लेकिन वो हमने उसके उन जो कहें कि हमारे सीमित संसाधनों के बीच में ये किया। तो अब जो ये श्रमिक लौट रहा है वो अपने राज्यों में कैसे उसको हासिल करेगा, उसके लिए सरकारें तैयार हैं, और जहां पहले से इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स हैं वो कैसे इस मौके का फायदा लेंगे, क्योंकि कल उन्होंने बहुत साफ कहा लैंड लिक्विडिटी एंड लॉज प्रधानमंत्री के भाषण में। और इसमें जो सबसे बड़ी चीज है कि आप जब एमएसएमई सेक्टर की बात करते हैं तो बहुत बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं उनके वर्कर तो अभी भी नहीं लौटे हैं। मतलब अगर आप ये कहेंगे कि रिलायंस कंपनी में कोई काम करने वाला कहीं लौट आया है तो वो नहीं लौटा है, या ऐसी बड़ी जो भी कंपनी है उनमें भारत में कहीं भी काम करने वाला नहीं लौटा है। वो जो छोटे छोटे उद्योग थे, तो वो छोटे उद्योग, वो मुझे लगता है कि भारत के अलग अलग हिस्सों में बढ़ेंगे। और दूसरी जो चीज है, कि जब चीन से आने वाला निवेश, जिसको बार बार कल प्रधानमंत्री कह रहे थे कि लोकल पर वोकल होना है, तो वो उसमें बहुत साफ है कि चीन से जो कंपनियां आएंगी वो भारत के अलग अलग हिस्सों में जाएंगी, तो वो जो श्रमिक लौट रहा है उसको कैसे रोजगार देंगे। अभी राज्यों के ऊपर होगा कि वो अभी जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा, और निश्चित तौर पर इसमें दो तीन तरह का मुझे कोई उसमें भ्रम नहीं दिखता है, एमएसएमई के लिए सबसे बड़ा हिस्सा होगा क्योंकि उनके पास लिक्विडिटी नहीं है, उनके पास वो रकम नहीं है कि वो अपनी फैक्ट्री शुरू कर सके क्योंकि 50 दिन से फैक्ट्रियां बंद है, तो सबसे ज्यादा बड़ा हिस्सा उनको होगा। उनको टैक्स रिलीफ दी जा सकती है, हाउसिंग सेक्टर और ऑटो सेक्टर के लिए कुछ इंसेंटिव का ऐलान किया जा सकता है। और जो सबसे बड़ी बात है कि हो सकता है कि हम ये भी देखें कि जो मिडिल क्लास है उसमें कुछ टैक्स रिलीफ, वो मेजर्स कुछ हो जिसको लिया जाए, तो ओवरऑल ये अगर हुआ तो उसका सीधा बेनिफिट श्रमिक को मिलेगा क्योंकि उनके हाथ में कैश देना और उनको राशन देना, वो काम तो पहले पैकेज में ही जो 1,70,000 करोड़ का पैकेज था उसमें भारत सरकार ने किया था।
हर्षवर्धन जी, अंतिम सवाल है, संक्षेप में इसे जानना चाहूंगा कि करीब करीब जो भारत का एनआरआई वर्ग है 17 लाख के करीब है, और ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें से 5 से 7 लाख लोग भारत वापस लौट रहे हैं, तो इनका उपयोग कैसे किया जा सकता है, इनके लिए क्या संभावना बनती है इस पैकेज के माध्यम से या जिस दिशा में भारत बढ़ रहा है उसमें?
देखिए, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी दो चीजें हैं। नंबर एक ये है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो भी लोग ये भारत लौट रहे हैं उसमें दो तरह के लोग हैं। एक लोग वो है जो जिनकी अपनी एंटरप्रेन्योरशिप है, जो उद्यमी लोग हैं, जो काम कहीं कुछ कर रहे थे और यहाँ आकर कुछ करना चाहते हैं। दूसरे हैं जिनके पास स्किल सेट बहुत बड़ा है, जिन्होंने जिनका भारत में जिन्होंने पढ़ाई लिखाई की, उसके बाद उन्हें अपने स्किल सेट को और एडवांस किया, उन देशों में गए जहां पहले से वो चीजें चल रही थी और वहां से और कुछ सीख कर वो लौट रहे हैं। तो इन दोनों तरह के लोगों के लिए एक तो फैक्ट्री सेटअप करना भारत में बहुत आसान हुआ है हाल के वर्षों में, और खास करके अभी उन राज्यों ने भी इसमें बहुत अच्छाई दिखाई है, बहुत तेजी दिखाई है, जिनके लिए कहा जाता था कि ये हिंदी पट्टी के राज्य हैं, भारत में उसको कहा जाता था कि वहाँ टैलेंट तो बहुत है लेकिन टैलेंट का इस्तेमाल करने का कोई जरिया नहीं है, वो एमपी यूपी जैसे राज्य हैं। लेकिन जो सबसे अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री ने जब उसका जिक्र किया, खास करके Y2K का जिक्र किया, तो उन्होंने कहा कि जो हमारे टैलेंटेड लोग हैं और जो हमारी डिमांड है उसको हम अपनी सप्लाई चेन से दुरुस्त करेंगे। तो मुझे लगता है कि उसमें उन एनआरआई का, खास करके उन लोगों का जो दुनिया के अलग अलग देशों में बहुत ज्यादा एडवांस स्किल सेट के साथ लौट रहे हैं, उनको पता है कि क्या नया चल रहा है जिसको हम यहाँ कर सकते हैं। बाजार भारत का ही था अभी तक, वो ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, चीन से या यूरोप से, कहीं और से देख रहे थे, अब वो भारत में ही बैठकर भारत के उस बाजार को देखेंगे और दुनिया का जिसको कहते हैं कि ग्लोबलाइज जो एक्सपीरियंस है और जो लोकलाइज उनकी जरूरत है, उन दोनों को मिक्स करके करेंगे। तो भारत सरकार उनके लिए भी मुझे लगता है कि वो सारे इंसेंटिव का कुछ हिस्सा तो जरूर दे रही होगी।
हर्षवर्धन जी, बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।